سیرت النبی کے مدنی دور کے سلسلے میں آج ہم دیکھیں گے کہ غزوہ بدر کے بعد اور کیا حالات ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں گے کہ سن 2 ہجری میں اور کیا واقعات تھے جو بدر کے علاوہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے اور انہوں نے پھر اسلام کے معاملے میں مزید کئی اور چیزوں کو واضح کیا. تو سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض ہوا، صدقہ فطر فرض ہوا، زکوٰۃ کا نصاب تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. یہاں آپ دیکھیے کہ سن 2 ہجری، پیچھے 13 سال مکہ ہے کہ اب رمضان کا روزہ اپنی اصل شکل کے ساتھ آیا. یہاں سے آپ کو اسلام کا مزاج بھی سمجھ آ رہا ہے، اور سیرت کو اس پڑھنے سے مختلف واقعات جو ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں تبلیغ کے بہت خوبصورت نقطے ملتے ہیں کہ اسلام اصل میں ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں سکھاتا. یہ تو ٹولز ہیں، اصل یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے یہ چیزیں فرض کی گئیں جس کے ساتھ لوگوں کو قبول کرنی آسان لگیں. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ صدقہ فطر ہوا، زکوٰۃ کا نصاب بھی ابھی ہوا، پھر اسی طرح صدقہ فطر کی فرضیت اور زکوٰۃ کے نصاب کی تعین سے اس بوجھ میں تھوڑی کمی آ گئی جس سے فقرا مہاجرین اور ایک بہت بڑا گروہ مسلمانوں کا جو دوچار تھا، کیونکہ وہ اس وقت ان مالی تنگیوں میں تھے جو کہ ان کو ان ساری چیزوں کے لیے اسٹرگل کرنے پہ بہت زیادہ مائل کر رہی تھیں. پھر سن 2 ہجری ہی میں مسلمانوں نے پہلی عید منائی جو شوال 2 ہجری کی عید تھی. سوچیے ذرا، پیچھے سے غزوہ بدر جس کو یوم الفرقان کہا جا رہا ہے، فتح مبین تھی، اور اس کے بعد عید آئی. تو یہ وہی بات ہے کہ نور و نلا نور، ایک خوشی کے اوپر دوسری خوشی مسلمانوں کو ملی. پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے گھروں سے باہر نکل کر اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی اور اس کی تعریف اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے تکبیرات پڑھی. کیسا مدینہ لگتا ہوگا، اور اس سے پیچھے کیسے گھٹے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے. دیکھیے غلامی تو غلامی ہوتی ہے، پردیس میں، غیر ملکوں میں آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو عید کی خوشیوں میں رکھے، لیکن جو خوشی کسی مسلمان ملک میں جا کر، خاص طور پہ اگر آپ کو حرم میں عید کا موقع ملا ہو، اتنے مسلمانوں کو تکبیرات پڑھتے دیکھ کر دل ہلنے لگتے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے اس وقت واقعی یہی کیفیت تھی مدینہ میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی، اور اس وقت مسلمان اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں پر خوشیاں منا رہے تھے، ان کو اللہ کی رحمت اپنے سامنے دکھ رہی تھی، اور شکر کے جذبوں سے ان کی جبینیں جو تھی وہ سجدوں میں جانے کے لیے تیار تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو سورۃ الانفال کی آیت 26 میں کہا، وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے. جب انسان بہت تھوڑا ہوتا ہے، چھوٹی سی کلاس ہوتی ہے، تو ڈر کیا ہوتا ہے، ہائے یہ دو چار بھی نہ آئے ان میں سے تو پھر تو کلاس ہی ٹوٹ جائے گی. لیکن انسان لگا رہے، بس اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم لوگ اس کا شکر ادا کرو. تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو طاقت دے، اسٹرانگ کر، اور ہم حقیقت میں تھوڑے سے زیادہ ہوں. اللہم زدنا ولا تنقصنا وکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا تؤثر علینا وردنا وردانا. اللہ قبول ہونے والے عمل کروائے، شہرت، ریاکاری، دکھاوا، کوئی کسی دوسرے کے دکھانے کے لیے کام نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی جناب میں قبولیت ہو. اور اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اپنی نظروں میں چھوٹا، لوگوں کی نظروں میں بڑا بنائے، اور ہم اپنے اس مقصد کو ہر دن اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھیں. کیا خوبصورت مدینہ کا وہ موقع ہوگا کہ تھوڑے سے لوگ پسے ہوئے مٹھی بھر، اور کل 313 میدان بدر میں جیتوائے گئے، اور آج اللہ ان کو خوشیاں دے رہا ہے. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب بدر کے بعد مسلمانوں کو کئی اور قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. سب سے پہلے تو جنگ بدر کے بعد اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں کو ایک ایسے گروہ سے سامنا کرنا پڑا جن کو شکست ہو چکی تھی، جن کے دل شکست کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے. پہلے ہی غصہ تھا، اب تو غصے کے ساتھ گرج اور انتقام کے جذبے آ چکے تھے. وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے. پھر اسی طرح یہود کا گروہ جو تھا، ان کے لیے بھی یہ فتح کوئی خوشی کا سبب نہ ہوئی. انہوں نے اس طریقے سے اس چیز کو لیا کہ اب تو مسلمانوں کے قدم جمیں گے. ان کے غم، غصے اور جلن بھلن کو قرآن پاک میں अल्लाह ताला ने फरमाया, लतजिदन्न अशद्दन्नास अदावत लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। सूरत मायदा की आयत नंबर 82 में आता है और छठे पारे की बिल्कुल ये आखिरी आयतें हैं कि तुम अहले ईमान का सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त दुश्मन यहूद को पाओगे या फिर मुशरिकीन को पाओगे। इसी तरह आप देखिए कि मदीना में कुछ लोग इन दोनों गिरोहों के हमराज भी थे। जब उन्होंने देखा कि अब तो हमारे पास कोई जगह ही नहीं रह गई कि हम अपनी इज्जत बाकी रखें, तो नतीजतन फिर उनको बज़ाहिर इस्लाम में दाखिल होना पड़ा। इनमें सबसे पहले अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी थे कि जो बदर की फतह के बाद इस्लाम में दाखिल हुए, क्योंकि उनको पता था कि अब इस्लाम के अंदर दाखिल होकर इसको नुकसान देंगे, बाहर नहीं होंगे। इस तरह एक और गिरोह था जो बदुओं का था, जो मदीना के इर्द गिर्द के इलाकों में रहते थे। इनको कुफर और इस्लाम से कोई दिलचस्पी ना थी, मन मौजी किस्म के लोग थे, लुटेरे थे, राहसन थे। आज भी दुनिया वाले यही सोचते हैं ना, सच्चा इस्लाम आएगा तो इसके नतीजे में हमारी मन मौजियाँ नहीं होंगी, हो सकता है बड़े बड़ों के हाथ कटे हुए दिखे, लिहाजा लोग इस्लाम को आने नहीं देते। तो ये थे वो हालात जो बदर के बाद मुसलमानों को तो दरपेश थे। चारों तरफ से मुसलमान खतरों में घिर गए और हर तरफ से मुसलमानों को ख़त्म करने और इनके खिलाफ साजिशों की कोशिश हुई। कुछ लोगों ने खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को धमकियां देनी शुरू कर दी, कुछ ने पीछे से वार करना शुरू कर दिया, हत्ता कि एक ऐसा माहौल बन चुका था कि मुसलमान अब अपने बका की जंग लड़ने लगे। इसी तरह मुसलमानों को ओहद के नाम पर एक साल के बाद एक ऐसी जंग से दोचार होना पड़ा जिसके बाद बदर की जो फतह थी उस पर थोड़ा सा असर भी पड़ा। तो इन सारे मामलों को अल्लाह के नबी ने कैसे टैकल किया, हम इसको देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ इसको आज के दौर से भी तो टैली कीजिए। हम कहते हैं मुसलमानों पे खतरे हैं, आज इधर हमला हो रहा है, आज उधर मुसलमान पिस रहे हैं, आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो क्या करें। आइए ज़रा इससे एक खामोश किस्म की रहनुमाई लेते हैं। एक वक्त ये होता है कि आपको चारों तरफ से कोई डरा रहा है और आप डर के दुबक के बैठ जाएं। याद रखिए ये इस्लाम का मिजाज नहीं। अल्लाह के नबी ने इन खतरात का मुकाबला बहुत जवां मर्दी से किया। आपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डाली, जिसने आपकी तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की आपने उससे पहले उस तरफ पेशकदमी कर दी। जो आपको घूर के देखता आप उसको घूर के देखते, और यही है फितरत का निज़ाम कि जब आप दबेंगे तो सब आपको दबाएंगे, पानी हमेशा नीचे की तरफ गिरेगा। जब मुसलमान दब जाते हैं, जब मुसलमान बिक जाते हैं, जब मुसलमान दूसरों को ये एहसास दिलाते हैं कि हम तुमसे डरते हैं, तो सब की तलवारों के रुख उनकी तरफ होते हैं। अल्लाह के नबी जुरतमंद थे, आप किसी को छेड़ते नहीं थे, लेकिन जब आपको पता चल जाए कि कोई हमें छेड़ना चाहता है तो फिर आप उसका मुकाबला खूब अच्छी तरह करते थे। इसकी एक दलील कबीला गतफान की शाख बनू सलेम के मुकाबले में एक जंग के बारे में थी। मुसलमानों को खबर मिली कि ये लोग मदीना पर चढ़ाई के लिए फौजें जमा कर रहे हैं। अब एक था कि आप डर जाते, छुप जाते, प्लीज़ नहीं, हमें बताओ क्या करें। दूसरा क्या था, आपने 200 सवारों को जमा किया और ख़ुद इनके इलाके पर धावा बोला कि तुम क्या आओगे, हम आएंगे। ऐसी जंगों को ऑफेंसिव वॉर कहते हैं। एक होती है डिफेंसिव, आप दिफा कर रहे हैं। ऑफेंसिव क्या है कि आप इकदामी जंग कर रहे हैं। मुकाम खुद्र में आप इनके घरों तक पहुँचे। बनू सुलैम इस वक्त इस अचानक हमले के लिए तैयार ना थे। अफरा तफरी मची और वह वादी के अंदर 500 ऊँट छोड़कर भाग गए जो मुसलमानों को माल गनीमत के तौर पे मिले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका खुम्स निकाल कर बाकी माल जो था वो माल गनीमत मुजाहिदीन में जमा कराया। हर शख्स के हिस्से दो दो ऊँट आए। इस कस्बे में यस्सार नाम का एक ग़ुलाम आया जिसे आपने आज़ाद कर दिया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी सुलैम के घरों में 3 दिन तक रहे और मदीना चले गए। और देखिए कि ये गजवा शवाल 2 हिजरी में बदर से वापसी के सिर्फ 7 दिन के बाद पेश आया। यहाँ से आप इस्लाम का मिजाज समझिए। इस्लाम डरता नहीं, इस्लाम जुरत चाहता है, कमज़ोरियाँ नहीं है इस्लाम में। इस गजवे के दौरान सुबह बिन अरफता को और बास्कत इब्ने उम्मे मक्तूम को मदीने का इंतज़ाम सौंपा गया। यानी हालात कोई भी हों, असबाब कोई भी हों, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालात में अपने दिफा की बहुत फिक्र करते थे। फिर इसी तरह इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश हुई। वही लोग जो जंगे बदर में शिकस्त खाकर गुस्से से बेकाबू हो चुके थे, अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ मक्का वाले ऐसे लगता था जैसे उबलती हुई हांडी की तरह खोल रहे हैं। बिलाखिर मक्का के 2 बहादुर नौजवान थे, उन्होंने ये तय किया, अपने ख्याल में ये सोचा कि आज हम इस शिकस्त का और इस ज़िल्लत और रसवाई का बदला लेंगे और नऊज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर देंगे। चुनाचे इसके पीछे एक बहुत फिर लंबी कहानी हो गई। बदर के कुछ दिन के बाद उमर बिन वहब, जो कुरैश के लोगों में से था, इनके सरदार जो शैतानी जहन रखते थे उनमें से था, मक्का में अल्लाह के नबी को और सहाबा कराम को अज़ियतें पहुँचाता था। और अब इसका बेटा वहब बिन उमैर जंगे बदर में गिरफ्तार होकर मुसलमानों की कैद में था। इस उमैर ने एक दिन सुफवान बिन उमैया के साथ हतीम में बैठकर गुफ्तगू की। ज़रा सोचिए, कहाँ बैठे हुए हतीम में, यानी मक्का में, और वहाँ बैठ के बातें की कि बदर के कुएं में फेंके हुए लोग थे, ऐसे थे, एक्सप्लॉयटेशन की बात की। इस पर सुफवान ने कहा, खुदा की कसम, इनके बाद जीने में कोई लुत्फ़ नहीं, यानी हमारे यार बेली दोस्त ही जो मारे गए, तो अब हमने क्या जीना है। उमैर कहने लगा, हाँ खुदा की कसम तुम सच कहते हो, देखो खुदा की कसम। लेकिन उस खुदा की कसम से सोचिए कि अल्लाह को मानते थे, बिगड़े हुए मुसलमान थे, कोई मुशरिक नहीं थे, ये काफिर नहीं थे, अल्लाह को मानते थे, लेकिन गलत कॉन्सेप्ट था। कहने लगे, अगर मेरे ऊपर कोई कर्ज ना होता ना, जिसकी अदायगी में के लिए मेरे पास कुछ नहीं, और मेरे घर वाले ना होते कि मेरे बात अगर वो ज़ाया हो जाएंगे, तो मैं सवार होकर जाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनको कत्ल कर देता, क्योंकि मेरे पास एक वजह मौजूद है कि मेरा बेटा उनके पास कैदी है, यानी बेटे को आज़ाद कराने की आड़ में जाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता। अब ये बात सुन के सुफवान को तो ये मौका गनीमत लगा। कहने का, अच्छा लो तुम्हारा कर्ज मैं अदा करूँगा, तुम्हारे घर वालों का मैं ख्याल रखूँगा, जब तक तुम नहीं आते मैं ऐसे उनका ख्याल रखूँगा, तुम जाओ ये काम करो। उमर ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, फिर मेरी और अपनी बात को दूसरों से ना शेयर करना, और कहा ठीक है। यानी ये बात अब इन दो में हुई। अब ज़रा सोचिए, दो लोग बैठे कहाँ आज इतने मील दूर बातें कर रहे हैं। उमर उठा, तलवार पर इसने जहर की छान लगाई, यानी तलवार के ऊपर फिर जहर भी लगा लिया कि कोई तलवार के वार से तो बच जाए लेकिन जहर से नहीं बचे। मदीना पहुंचा, अभी मस्जिद में अपनी ऊँटनी बिठा रहा था कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की निगाह उस पर पड़ गई। वो मुसलमानों की एक जमात के दरमियान जंगे बदर में अल्लाह ताला के जो इनामात थे, जो एजाजात थे, उसके बारे में बातें कर रहे थे। उन्होंने इनको आते ही देख कर कहने लगे, ये अल्लाह का दुश्मन उमैर किसी अच्छे इरादे से नहीं आया। फिर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए, कहा, अल्लाह के नबी, आपको पता है उमैर अपनी तलवार हमाइल किए हुए आया है, आपने कहा इसको मेरे पास आने दो। उमैर जब आया तो हज़रत उमर ने उसकी तलवार को इसके पास से पकड़ लिया, यानी तलवार जहाँ गले में लटकाते हैं ना, उसको बिल्कुल इसके करीब से पकड़ लिया, और अंसार के चंद लोगों से कहा कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और वहीं बैठ जाओ। यानी हज़रत उमर की फ़रासत देखिए, खौफज़दा हो गए कि ये यकीनन बुरे इरादे से आया है, और ये वाकई बुरे इरादे से आया है। लेकिन ज़रा देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहम्मुल और आपकी मोहब्बत। आपने जब ये कैफियत देखी कि हज़रत उमर उसकी गर्दन में उसकी तलवार का पर्तला जो है वो लपेट कर पकड़े हुए, तो कहा, उमर इसे छोड़ दो, और कहा, उमर तुम मेरे करीब आओ। इसने करीब आकर कहा, आप लोगों की सुबह बखैर हो, जैसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे तहिये से, तहिया कहते हैं मुलाकात के वक्त में जो भी दुआ दी जाती है, यानी एक ऐसा मुलाकात के वक्त एक ऐसा जुमला सिखाया जो तुम्हारे इस तहिये से बेहतर है, और वो सलाम है, और ये जन्नतियों का भी है। यानी आपने ऐसे मौके पे भी देखी तबलीग की जबकि कोई कुफर के साथ आया था। फिर आपने कहा, उमैर तुम क्यों आए हो? इसने कहा, वो जो मेरे कैदी आपके पास है ना, वो लेने आया हूँ, बस आप उनके बारे में एहसान फरमा दें। आपने कहा, अच्छा कैदियों को लेने आए हो, तो फिर ये बताओ कि तुम्हारी गर्दन में तलवार क्यों है? तलवार डाल के तो नहीं कैदियों को लेके आते, कैदी लेने आते। इसने कहा कि अल्लाह इन तलवारों का बुरा करे, ये हमारे कुछ काम ना आ सकी। दिल में एक बोझ था ना, यानी बदर के दिन तलवारें काम ना आई तो आज क्या काम आएगी। आपने कहा, सच सच बताओ क्यों आए हो? क्या बस सिर्फ इसी कैदी के लिए आए हो? कहेंगे, हाँ इसी कैदी के लिए आए हो। आपने कहा, नहीं, बल्कि तुम और सुफियान बिन उमैया हतीम में बैठे और कुरैश के जो मकतूलीन थे उनकी बातें की, फिर तुमने अपने कर्ज का तذکرہ किया, फिर अपने घर वालों का तذکرہ किया, और फिर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से आए हो, और इस पर सुफवान ने तुम्हारे कर्ज और घर वालों की जिम्मेदारी ली इस शर्त पर कि तुम मुझे कत्ल करो। सोचिए ज़रा, क्या इसके पाँव के नीचे से ज़मीन नहीं निकली होगी? आपने फरमाया, याद रखो अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान हायल है। अब ये आपकी नबूवत का इतना बड़ा सबूत था कि उमैर बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे यकीन है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप हमारे पास आसमान की जो खबरें लाते हैं, जो वही नासिल होती है, हम उसको झुटलाते थे, लेकिन आज जो मामला मेरे और सुफयान के बीच में हुआ, ये तो किसी और को पता ही नहीं था, इसलिए मुझे यकीन है कि ये बात आपको अल्लाह ने बताई। कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत दी और मुझे यहाँ तक लेके आया। देखिए बाज़ दफ़ा लोग कितने बुरे इरादों से आते हैं, लेकिन अल्लाह उनको कितनी बड़ी खैर देते हैं। दुआ करें अल्लाह ने हमारे लिए खैर का मामला पकड़ाओ। जब अल्लाह आपके लिए खैर का मामला करेगा ना, तो शर में खैर निकलेगी। एक होता है आप अल्लाह का हाथ पकड़ लें, ये भी अच्छा है, लेकिन एक यह है कि अल्लाह आपका हाथ पकड़े। आप क्या सोचते हैं कौन सा मामला बेहतर है? आप अल्लाह का हाथ पकड़े? नहीं, आप तो छोड़ देंगे। ये कहें कि अल्लाह तू मेरा हाथ पकड़ ले। एक छोटी सी बात आज के सेशन में शेयर की थी कि बच्चा और माँ दरिया पार कर रहे थे, कुछ पानी का रास्ते में थोड़ा सा मुकाम था, तो माँ ने बेटे से कहा कि बेटा आओ मेरा हाथ पकड़ लो। तो बेटे ने कहा, नो मम्मी, यू विल टेक माई हैंड, तुम मेरा हाथ पकड़ो। माँ ने कहा, व्हाट्स द डिफरेंस, फ़र्क क्या है? तो बच्चा कहने लगा कि मम्मी फ़र्क ये है कि अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो ज़रा भी कोई बीच में रुकावट आई तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन दैट्स आई नो कि अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा, कुछ भी रास्ते में मुश्किल आई, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी। तो ये है अल्लाह का हाथ पकड़ना। दुआ कीजिए कि अल्लाह आपका हाथ पकड़ ले, शर से खैर अल्लाह निकाल देगा। अल्लाह मुसीबतों, दुखों, बीमारियों, परेशानियों में खैर निकाल देगा। आज से अपनी दुआओं का ये हिस्सा बना लें, अल्लाह तू मेरा हाथ पकड़। मैं तेरा हाथ क्या पकड़ूंगी, मैं तो कच्ची हूँ। नहीं, फ़कद इस्तमसक बिलुरवतिल वुस्का, अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त हो जाए। युख्रिजूनहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, फिर धीरे धीरे अल्लाह जुलुमात से बुलाता है। सुफान को कोई पता था कि ये क्या करने जा रहा है? उमेर को कोई पता था कि क्या मेरे लिए फैसले ऊपर लिखे गए हैं? लेकिन ये अल्लाह के फैसले होते हैं, इसलिए कभी किसी की हिदायत से मायूस ना हो, कभी किसी के बारे में जजमेंटल ना हो, कभी किसी बात को अपने खिलाफ थ्रेट ना फील करें। दुश्मन मुखालिफ आपके खिलाफ 10 बातें सोचें, अल्लाह आपके लिए खैर निकाल देगा अगर आप हक पे होंगे। और यही हुआ, ये शख्स जहाँ मुसलमान हो गया, कलमा हक की शहादत दी। अल्लाह के नबी ने अपने साथियों से कहा कि उठो, अपने भाई को दीन सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, इसके कैदी को आज़ाद करो। यहाँ से पता चलता है कि शहादा देने के बाद अब जाके सो नहीं जाना, अब इल्म दो इनको, इनको नमाज, रोज़ा, दीन सिखाओ। और अब ऑनरली उसके बेटे को भी आज़ाद कर दिया। ये है ना कि इस्लाम के साथ ही साथ खैर ही खैर आ गई। और पीछे से सुनिए ज़रा दोस्त का हाल। सुफवान लोगों को बातों बातों में करे, अभी कुछ दिनों बाद खुशखबरी सुन लोगे, देखना भी एक ऐसी बात होने वाली है, तुम्हें बदर के सारे गम भूल जाएंगे। और साथ चुपके चुपके आने जाने वालों से उमेर के बारे में पूछता। आखिर एक शख्स ने आके कहा, किस उमेर की बात करते हो भाई, वो तो मुसलमान हो चुका है। सुफवान ने यह बात सुनी, आप सोचो उसके तो दिल पे चोट पड़ी होगी ना, कसम खाई कि इससे कभी बात ना करेगा ना कभी उसे फ़ायदा देगा। कहने लगा, इतनी बुरी बात बता रहे हो जो मैं तुमसे नहीं बोलता। और उधर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम सीखा और मक्के की राह ली, और वहीं मुकीम रहकर इस्लाम की दावत देनी शुरू की। बहुत से लोग उनके हाथ से मुसलमान हुए। ये है अल्लाह ताला युख्रिजुल हय्य मिनल मय्य, खैर में से शर निकालता है। तूलिजुल लैल फिन नहार, रात से दिन को और दिन से रात को निकालने वाला है। बस अल्लाह ने हमारे लिए खैर के मामले किए हों, कभी फिक्रमंद ना हो, कभी परेशान ना हो। मोमिन किसी हाल में भी उदास नहीं होता, किसी हाल में दिल नहीं छोड़ता, वो और हिम्मत से काम करता है, वो और आगे बढ़ता है। उसको पता है मेरे लिए फतह शिकस्त दोनों एक हैं, हार और जीत बिल्कुल एक है। बस अल्लाह मुझे अपना बना ले, मुझे ज़िंदगी के आखिरी सांस तक अपना बना के दुनिया से ले जाए, एक भी ना मुसलमान हो मेरी बला से, इस्लाम को एक टके का फ़ायदा ना हो मेरी बला से, मैं बच जाऊंगा, मेरी कोशिशों से बच जाऊंगा। लोगों को तो पता भी नहीं होता कि कल क्या होने वाला है, अल्लाह उनको क्या दिखाने वाला है। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लम ने अपने आला अखलाक के साथ लोगों को रखा। अब देखिए, अगर आप उमर को देखते कत्ल करवा देते तो उसका इस्लाम गया ना। इससे मुसलमानों को हौसला, समझदारी, अक्लमंदी, सुकून के साथ बात करना भी सिखाया जा रहा है। हर वक्त गुस्से में ना रहा करो, हर वक्त जले बुने ना रहा करो, हर वक्त दूसरों के खिलाफ कत्ल के और कुफर के फतवे ना दिया करो। सोचो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या खैर रखी हुई है। दुश्मन खैर में आते, अगर मुसलमान अग्रेसिव हो जाते तो पहले ही दिन ये सब कुछ हो जाता। पहले ही दिन अल्लाह की ज़ात जो है पता नहीं मुसलमानों को क्या क्या तकलीफ़ें दिलवा देती। तो बहरहाल इस मौके पे फिर एक और गज़वा छोटा सा पेश आया जिसको गज़वा बनू कैनका कहते हैं। नबी सल्लम जब मदीना आए तो अपने यहूद के साथ एक माहदा किया था, हम अपने पिछली नशस्तों में इसको देख चुके। पूरी कोशिश और ख्वाहिश थी कि इस माहदे में जो भी फैसला हुआ है वो कायम रहे। कभी भी मुसलमानों ने किसी से कोई वादा करके तोड़ा नहीं, कोई कमिटमेंट करके उसको छोड़ा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ भी तो बात हो ना, गिरा तो तभी कायम रहती है जब दोनों साथी उसके सिरे पकड़ के रखें। जिनके साथ ये वादा हुआ था उनकी तारीखी गदर और खयानत और अहद शिकनी से भरा है। बहुत जल्दी वो अपने पुराने मिजाज की तरफ पलटे और मुसलमानों के अंदर आकर साजिशों के जाल फैलाए, लड़ाने भड़ाने लगे, कहीं आके मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बातें करते जिससे सोसाइटी में इस तरह पैदा हो। तो इसी में एक वाक़या हुआ था, और वो क्या था कि एक बूढ़ा यहूदी था जिसका नाम था शास बिन कैस, बाज़ जगह शास आता है बाज़ जगह शाश आता है। बूढ़ा था, उम्र की आखिरी मंजिलें तय कर रहा था, दिल से कुफर पे था, मुसलमानों से सख्त हसद और अदावत था। एक दफ़ा सहाबे कराम की मजलिस के पास से गुजरा, यहाँ उस और खजरत के लोग बैठे आपस में बातें कर रहे, गुफ्तगू हो रही। ये देखकर ये जल गया, कहने लगा देखो कल तक ये लड़ते थे, कल तक तो जंगे बवास के नाम पे इनकी तलवारें थीं, और आज इस्लाम ने इनके दिलों में इतनी मोहब्बत इज्तमाईयत और उल्फत डाल दी। बस इस पे जला, कहने लगा कि वो इस दियार में बनो कैला के अशराफ मुत्तहिद हो गए, बखुदा इन अशराफ के इत्तेहाद के बाद तो अब हमारा यहाँ गुजर ही नहीं। यानी बात का खुलासा यही कि ये कैसे मिल गए। आज भी अब देखिए खानदानों में दो भाई बहन या कहीं मियाँ बीवी या देवरानी जिठानी लड़ते रहे ना तो सारे खानदान को एक टॉपिक मिला होता है, और कभी ऐसे लड़ने वालों को हंसता बोलता देखे तो लोग कहते अच्छा जी अब हम फोन पे लंबी बातें क्या करेंगे, ये तो बड़े एक हो गए। इसका बिल्कुल यही हाल था। इसने ये पसंद नहीं किया, एक नौजवान यहूदी को तैयार किया, कहने लगा जाओ इस मजलिस में इनके साथ बैठो और जंगे बवास और उसके पहले के हालात का जिक्र करो, और जो शेर उस मौके पे कहेंगे तो वो सुनाओ। इसने कहा ठीक है। ये गया, इसने जाके वहाँ बातों ही बातों में जंगे बवास का तذکرہ शुरू कर दिया। अब जोश बहुत होता है, और आप याद रखिए अरबों का खून बड़ा गर्म है, अच्छे होंगे तो हर वक्त आपको प्यार बात से बात करेंगे, और गुस्से में आएंगे तो हो सकता है कि उस वक्त आप उनका वो रूप पहचान ही ना सके। थोड़ी देर पहले जो महफिल इतनी अच्छी सजी हुई थी उसमें तू तू मैं हो गई, लोग झगड़ने लगे, फख्र करने लगे, हत्ता के दोनों कबीलों के एक एक आदमी ने घुटनों के बल बैठकर एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। ये उनका एक तरीका होता था रद्दो कदा, यानी एक को उसको बुरा कहता वो उसको बुरा कहता, जैसे कभी आपने भांडों को देखा होगा, कभी एक के खिलाफ बात करते हैं फिर वो दूसरे के खिलाफ करते हैं, हत्ता के यहाँ तक पाते कि चलो फिर जंग करके दिखाते हैं क्या बड़ी बात है। इस पे दोनों लड़े, कहने लगे हम हर्रा नाम के मैदान में जाते हैं और लड़ते हैं, और हथियार हथियार की आवाज़ें आने लगीं। सोचिए ज़रा, किसी खाने के टेबल पे बैठे सब गुफ्तगू कर रहे थे और थोड़ी देर बाद ऐसी ज़बरदस्त लड़ाई हो कि बर्तन चलने लगे, कैसी अजीबो गरीब कैफियत होगी। यही कैफियत कुछ इधर हुई, लोग हथियार लेकर हर्रा की तरफ निकले। अब करीब था कि बहुत जंग बड़ी हो जाए, लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया कि अब यहाँ कोई गड़बड़ होगी। कुछ लोग फ़ौरन नबी सल्लम के पास गए, उनको खबर दी कि यहाँ तो ये मामला हुआ, आप अपने साथ कुछ महाजरीन को लेकर आए, और इनके पास पहुँचे और वहाँ आपने फिर बहुत दिलसोज किस्म का एक खुतबा दिया। आपने फरमाया मुसलमानों की जमात, अल्लाह अल्लाह, क्या मेरे रहते हुए जाहिलियत की पुकार, और वो भी इसके बाद कि अल्लाह तुम्हें इस्लाम की हिदायत से सरफराज फरमा चुका है, और इसके ज़रिए तुमसे जहालत का मामला काट कर और तुम्हें कुफर से निजात देकर तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ चुका है, अभी से ये सोचने लग गए हो। इस पर फिर सहाबा किराम को एहसास हुआ कि हमें क्या हो गया था। होश आई, थोड़ा सा रोए धोए, लगा कि ये शैतान का एक हमला था जो उसने हम पे किया। फिर दिल मिले और इस तरह नबी सल्लम की सिर्फ इतनी सी बात सुनकर ये वापस आ गए। अल्लाह करे कि आज के मुसलमानों का भी यही हाल हो, कि वो अपने आप को हकीकत में इस चीज़ के साथ लेकर चलें कि हमने आपस में लड़ लड़ के दुश्मनों को खुश नहीं करना। याद रखिए सबसे पहला हदफ ही ये है दुश्मन का, कि मुसलमान को मुसलमान से लड़ाए। इस तरह के हंगामे और इस तरह पैदा करते थे यहूद मुसलमानों की सफ़ों में कि जिसकी वजह से मुसलमानों के बीच में छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी हो जाती थी, कभी इन्होंने एक ऐसी प्रोपेगंडा शुरू किया कि सुबह मुसलमान हो जाते, कुछ दिन के बाद या उसी शाम को जाके काफिर हो जाते। इस पे भी कुरान पाक में आयात मौजूद हैं। सादा किस्म के कमज़ोर ईमान के लोग जो थे उनके दिलों में शक आते हैं, किसी के साथ माली ताल्लुक़ होता और वो मुसलमान हो जाता तो उसके ऊपर मईशत की राहें तंग कर देते हैं। यानी जो कुछ कर सकते थे इन्होंने किया, किसी ने इनका कुछ देना होता सुबह शाम उससे इस तरह मुतालबे करते कि वो फिर परेशान हो जाते, किसी का कर्ज होता तो उसके कर्ज को पकड़ लेते, कोई मुसलमान हो जाता तो कहते कि अब तुम्हारे साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, किसी किस्म के हालात नहीं हैं। तो ये वो सारे हालात थे कि जो अल्लाह के नबी सल्लम को और मुसलमानों को उन हालात में दरपेश थे। हरकतें तो ये शुरू से ही हो रही थी लेकिन अब शिद्दत आ गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा करम का हाल क्या था कि इनकी हिदायत की उम्मीद में आप इनके साथ बुरा नहीं करते थे, कहते थे शायद ये ठीक हो जाए, शायद इनके साथ खैर हो जाए, शायद ये बेहतर हो जाए। इतने में फिर एक जंग हुई। हुआ क्या था, बनू कैनका नाम का एक कबीला था यहूद का, मुसलमानों को जब बदर में ज़बरदस्त किस्म की फतह हासिल हुई, इज्जत मिली, मुसलमानों का रोब और दर्द दबदबा हर जगह फैल गया, तो इनके अंदर हसद और उभरा। इन्होंने खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के साथ दुश्मनी का मामला किया और सबसे ज़्यादा इनका जो सरदार मुसलमानों के खिलाफ बातें करता था वो काब बिन अशरफ था। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसने मुसलमानों के खिलाफ बातें की। तीन कबीले थे यहूद के मदीना में, जिसमें से सबसे ज़्यादा बुरे अतवार वाला कबीला बनू कैनका था। ये लोग रहते तो मदीना के अंदर ही थे और इनका मोहल्ला भी बनू कैनका ही के नाम से था। पेशे के एतबार से सोनार थे, लोहार भी थे और बर्तन साज थे, यानी धातुओं को पिघलाते, कब कुछ से सोना बनाते, कुछ से जेवरात बनाते और बर्तन और इस तरह हथियार बनाते। अब हर एक के पास सामान्य जंग मौजूद था क्योंकि उनके घर का काम था। इनके पास तकरीबन 700 फौजी तैयार थे हर वक्त। मदीने में सबसे बहादुर यहूदी यही थे। सबसे पहले इन्होंने अहद शिकनी की और उसमें कुछ इस किस्म की कैफियत आई कि जब मुसलमान बदर में फतह से हमकनार हुए तो ये मुसलमानों के और दुश्मन हुए, और ज़्यादा इन्होंने गलत हरकतें की कि मुसलमानों में आपस में जंग शुरू हो। अब होता क्या कि जो मुसलमान इनके बाज़ार में जाता, ज़ाहिर है कि ख़रीदो फरोख्त के लिए जाना तो पड़ता ही था, तो वो उससे कुछ मजाक करते, खेल करते, तकलीफ़ देते, हत्ता कि मुसलमान औरतों से इन्होंने छेड़छाड़ शुरू की। जब इस किस्म के हालात हुए तो मुसलमानों की गैरत ज़ाहिर है कि जोश में आई। अल्लाह के नबी ने बाज़ मौके पे इनको नसीहत की, वाज़ किए, देखो ऐसे ना करो, ये बुरी बात है, ऐसे ना करना। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। इमाम अबू दाऊद इब्ने अब्बास से एक रिवायत लाते हैं कि जब नबी सल्लम ने कुरैश को बदर के दिन शिकस्त दे दी और आप मदीना तशरीफ़ लाए तो बनू कैनका के बाज़ार में यहूद को जमा किया और फरमाया, ऐ जमात यहूद, इससे पहले इस्लाम कबूल कर लो कि तुम पर भी वैसी ही मार पड़े जैसी कुरैश पर पड़ चुकी है। उन्होंने कहा, मोहम्मद तुम्हें इस बिना पर खुश नहीं होना चाहिए, यानी इस खुद फरेबी में ना मुबतला हो जाओ कि तुमने कुरैश जैसे अनाड़ी और वो लोग जो जंग से नाशना उनसे टक्कर ली थी, तुम्हारी हमसे लड़ाई हुई तो हम मर्द हैं, हम तुम्हें बताएंगे हम कितने बहादुर हैं। इस पर सूरत बकरा की आयात नाजिल हुई थी, कुल्लिल्लज़ीना कफरू सतुग़लबून व तुख़शरून इला जहन्नम, इन काफिरों से कह दो अन करीब तुम मकलूब किए जाओगे, जहन्नम की तरफ हाँके जाओगे और वो बहुत बुरा ठिकाना है। जिन दो गिरोहों में टक्कर हुई उनमें से तुम्हारे लिए निशानी है, एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा काफिर था। ये इनको आंखों देखने में अपने से दोगुना देख रहे थे और अल्लाह अपनी मदद के जरिए जिसकी ताई चाहता है करता है। इसके अंदर यकीनन नज़र रखने वालों के लिए इबरत है। तो ये आयात बनू कैनका के बारे में नाजिल हुई। बनू कैनका ने एक औरत के साथ इंतहाई बदतमीज़ी की और हुआ क्या कि जब वो इनके पास कोई जेवर लेने के लिए गई तो जो कपड़ा होता है उसका कपड़ा पीछे से किसी ने बांध दिया। जब वो औरत उठी तो उसका सतर खुल गया। अब ये मंजर ऐसा था कि जिससे मुसलमानों की गैरत पे चोट पड़ती थी। यहूदियों ने मजाक उड़ाना शुरू किया, औरत ने चीखों पुकार की, एक मुसलमान ने इस सुनार पर हमला किया और उसे मार दिया। जवाब में यहूद ने भी उस मुसलमान को मार दिया। इसके बाद जो मकतूल मुसलमान के घर वाले थे उन्होंने शोर मचाया और यहूद के खिलाफ मुसलमानों से फरियाद की। नतीजा क्या हुआ कि मुसलमानों के और बनू कैनका के दरमियान जंग हुई। यानी ये बुनियाद बनी थी। आप देखिए, कल भी औरत की इज्जत पे हमला था, आज भी। कल भी मुसलमान औरत को इस तरह से बाजार में ले जाने की कोशिशें की गईं और उसको इस तरीके से ख़राब किया गया, और आज भी यही हुआ। मुसलमानों ने जब ये बात सुनी, अल्लाह के नबी के सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ। आपने मदीना का इंतज़ाम अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंज़र को सौंपा और ख़ुद हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में मुसलमानों का झंडा दिया और लश्कर के साथ बनू कैनका का रुख किया। उन्होंने जब आपको देखा तो खौफ के साथ घड़ियों में छुप गए, किलों में चले गए। अल्लाह की ये शान है। अल्लाह के नबी ने कहा ना कि दुश्मन मेरे से 1 महीना दूर होता है तो उसके दिल पर मेरा रोब होता है। यहाँ भी यही हुआ। आपने इनका सख्ती से मुहासरा किया। जुम्मे का दिन था और शवाल 2 हिजरी 15 तारीख थी। यानी 15 रोज तक मुसलमानों ने इनका मुहासरा किया। अल्लाह ने इनके दिलों में रोब डाल दिया। और अल्लाह की ये शान है, जिस दुश्मन से अल्लाह ने मुसलमानों को फतह देनी होती थी, दुश्मन के दिल में रोब डालता था। यहाँ से आप इस्लाम का मिजाज समझिए। ये कभी नहीं हो सकता कि आपके उस हथियार काफिरों से ज़्यादा होंगे, आपकी तादाद ज़्यादा होगी। अल्लाह रोब के साथ आपको ज़्यादा करता है। जब मुसलमान सच्चे होते हैं, अल्लाह उनका रोब डाल देता है काफिरों के दिलों में। और यही हुआ इधर भी। इन्होंने हथियार डाल दिए कि अल्लाह के नबी सल्लम इनकी जान माल, इनके आल औलाद और औरतों के बारे में जो फैसला करेंगे हम मानेंगे। आपने हुक्म दिया कि इन सब को बांध दिया जाए। ये वो मौका था जब अब्दुल्ला बिन उबई को पहली बार अपना मुनाफिकाना किरदार अदा करने का मौका मिला। इसने आके खूब हमदर्दियाँ की इस कबीले बनू कैनका का। ये बड़ा दिली दोस्त था। इसने आके उनके बारे में इतनी बातें की कि आपको मजबूर किया कि इनको माफ़ कर दें। कहने लगा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जिनसे मेरा मुआहदा हुआ हुआ है, यानी मेरे मुआहदीन के बारे में एहसान कीजिए। क्योंकि ये बनू खजरत के हलीफ थे और अब अब्दुल्ला बिन उबई बनू खजरत से था। लेकिन अल्लाह के नबी ने बात थोड़ी टाल दी। इस पर इसने अपनी बात फिर दोहराई। अब आपने उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लिया, लेकिन इस शख्स ने आपके गिरेबान में हाथ डाल दिया। ज़रा सोचिए इसकी ज़रूरत कितनी थी। आपने फरमाया, मुझे छोड़ दो, और ऐसे गज़बनाक हुए कि लोगों ने गुस्से की परछाइयाँ आपके चेहरे पर देखी। फिर आपने फरमाया, तुझ पर अफसोस, मुझे छोड़ दो। लेकिन ये मुनाफिक अपने इसरार पर अड़ा रहा, बोला, नहीं बखुदा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि आप इन लोगों के बारे में एहसान फरमाएं। 400 खुले जिस्म के जवान और 300 ज़िरह पोश जिन्होंने मुझे सुर्खों स्याह से बचाया था, आप इन्हें एक ही सुबह में काट कर रख देंगे? वल्ला ही मैं ज़माने की गर्दिशों का ख़तरा महसूस कर रहा हूँ। यानी उनकी साइड ले रहा है कि जिन्होंने एक मौके पे मुझे बचाया था, मेरे दोस्त हैं, क्या आप उनको मार देंगे? लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम की हिकमत देखिए कि इस वक्त अगर आप इससे टक्कर लेते तो ये शख्स अभी नया नया इस्लाम पर आया था, तकरीबन 1 महीना हुआ था। अगर आप इसकी बात ना मानते तो हो सकता है कि भी इस्लाम उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने रियायत का मामला किया, इसकी खातिर इन सब की जान बख्शी की, लेकिन हुक्म ये दिया कि ये मदीना से चले जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में ना रहें। चुनांचे सब लोग थोड़ा सा वहाँ से निकले और शाम के इलाके की तरफ चले गए। लेकिन देखिए, अल्लाह के नबी ने छोड़ा, अल्लाह ने नहीं छोड़ा। वहाँ पहुँचे, उनमें से अक्सर की मौत वाकई हो गई, यानी तबई मौत आ गई। फैसले तो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह के नबी ने इनके माल जब्त किए। इनमें 3 कमानें, 2 जिरहें, 3 तलवारें, 3 नेजे अपने लिए रखे और माल गनीमत में से खुम्स भी निकाला, और गनीमत का माल जमा करने का काम मोहम्मद बिन मसलमा ने दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर मुस्लिम कोई घर बैठने वाला दीन नहीं है, तो जोहदे मुसलसल का नाम ज़िंदगी है। दुआ करें अल्लाह हमें इस रास्ते में ही ले जाए, आखिरी दिन तक हम कोई कारामत काम करते हुए जाएं। इस्लाम का मकाम ही क्या है कि पहले अपनी ज़ात, फिर बच्चे, फिर घर वाले, फिर ख़ानदान, फिर मुआशरा, फिर पूरी दुनिया। पूरी ग्लोबल फैमिली बन जाती है इंसान की जब वो अल्लाह के रास्तों में आता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस्लाम पर रखे, इस्लाम के लिए जिएं, इस्लाम के लिए मरें, और जो शहादा हम दें, अल्लाह ताला इसको हमारे दिल की गवाही बना दें।